ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
ग्रंथ श्रीमद्भागवतम छठा स्कंद अध्याय संख्या 18, अध्याय का नाम है राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत, श्लोक संख्या 75। और आज ये अध्याय समाप्त हो जाएगा तो 75, 76, 77, 78। तात्पर्य केवल श्लोक संख्या 75 का ही है और बोर्ड पे वो लिखा है, कृपया हमारे पीछे दोहराइए।
आराधे आत्मप्रदं देवं स्वात्मानं जगदीश्वरं कोवृणित गुणस्पर्शं बुद्धः स्याद् नरकेऽपि यत्। आराध्यं आत्मप्रदं देवं स्वात्मानं जगदीश्वरं कोवृणित गुणस्पर्शं बुद्धा स्यानर्के पियत्। आराध्य आत्प्रदं देवं स्वात्मानं जगदीश्वरं कोवृणित गुणस्पर्शं बुद्धा स्यानर्के पियत्।
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की आराध्य उपासना के बाद आत्मप्रदम जो अपने आप को अर्पित करता है देवम भगवान को स्व आत्मानम परम प्रिय जगत ईश्वरम ब्रह्मांड के स्वामी को का क्या व्रणित चुनेगा गुण स्पर्शम भौतिक सुख बुद्धः बुद्धिमान मनुष्य स्यात् है नरके नरक में अपि भी यत् जो। अनुवाद समास समस्त कामनाओं का अंतिम लक्ष्य श्री भगवान का दास बनना है। यदि कोई बुद्धिमान मनुष्य अपने भक्तों को आत्मसमर्पित करने वाले परम प्रिय भगवान की सेवा करता है तो वह भौतिक सुख की कामना कैसे कर सकता है जो नरक में भी प्राप्य है। तात्पर्य कोई बुद्धिमान व्यक्ति मात्र भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए भक्त बनना नहीं चाहेगा, यह भक्त की परीक्षा है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वहि। हे परम शक्तिमान ईश्वर, मुझे ना तो धन संचय की इच्छा है, ना मैं सुंदर स्त्रियों की कामना करता हूँ, ना ही मुझे अनेक अनुयायी चाहिए। मैं तो जन्म जन्मांतर आपके अहेतु की भक्ति की कामना करता हूँ। शुद्ध भक्त ईश्वर से धन दास सुंदर पत्नी यहाँ तक कि मुक्ति की भी कामना कभी कामना नहीं करता। किंतु भगवान वचन देते हैं, योगक्षेम महामेहम,
मैं स्वेच्छा से अपनी सेवा के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु लाता हूँ। श्लोक संख्या 76 का अनुवाद। हे माता, हे महियसी, मैं मूर्ख हूँ। मैंने जो भी पाप किए हैं उसके लिए आप मुझे क्षमा प्रदान करें। आपके 49 पुत्र बिना किसी क्षति के ही आपकी भक्ति के कारण उत्पन्न हुए हैं। मैंने शत्रु होने के नाते उनको खंड खंड कर दिया था, किंतु आपकी परम सेवा के कारण वे मरे नहीं। श्लोक संख्या 77। श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, दिति इंद्र के इस उत्तम आचरण से अत्यंत प्रसन्न हुई। तब इंद्र ने अपनी मौसी को आदरपूर्वक प्रणाम किया और उसकी आज्ञा से अपने मरुदगण भाइयों सहित स्वर्ग लोक चला गया। श्लोक संख्या 78। हे राजा परीक्षित, मैंने यथाशक्ति तुम्हारे पूछे गए प्रश्नों विशेष रूप से मरुतों के इस शुद्ध मंगलकारी वर्णन का उत्तर दिया। अब तुम आगे जो पूछना चाहते हो पूछो, मैं उसे भी विस्तार से बताऊंगा। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के 6ष्टम स्कंध के अंतर्गत राजा इंद्र का वध करने का दिति का व्रत शीर्षक 18वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। अब सब भक्तों का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो ये अध्याय आज समाप्त होता है। इस अध्याय का नाम है राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रीमद्भागवत एक अमल पुराण है और श्रीमद्भागवतम का एक ही उद्देश्य है कि बद्ध जीव भगवान की अहेतु की अप्रतियता भक्ति में पूर्ण रूप से स्थित हो जाए, क्योंकि यही एक जीवात्मा की पूर्ण सिद्धि है। सावे पुंसो परो धर्मा यथा भक्ति अधोक्षचे अहेतु की अप्रतियता यात्मा सुप्रसिद्धति। हालांकि अध्याय का नाम है राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत, ये बड़ा वॉयलेंट बहुत ही हिंसात्मक लगता है कि इंद्र का वध करने की योजना बनाई जा रही है दिति के द्वारा। स्वर्ग के राजा, देवताओं के राजा इंद्र का वध करने की योजना है, वो भागवतों में उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे अध्याय का जो निष्कर्ष निकलता है वो निकलता है शुद्ध भक्ति और भक्ति की महिमा। जैसा कि आप इस प्रसंग से आप परिचित होंगे, दिति दैत्यों की माता है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की माता है। उसके पति हैं कश्यप मुनि और उसकी एक बहन है अदिति, जो कि देवताओं 12 अदित्यों की माँ है। तो दिति के दो पुत्रों का वध भगवान विष्णु द्वारा होता है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। उसके बाद दिति हमेशा शोक में रहती है और चाहती है कि ऐसा पुत्र मैं जन्म दूं जो कि इंद्र का वध कर दे, क्योंकि इंद्र के कहने पर ही विष्णु ने मेरे दो पुत्रों का वध किया था। तो जब दिति इस प्रयोजन से अपने पति कश्यप मुनि की बहुत सेवा करती हैं, उनके हृदय को जीत लेती हैं, कश्यप मुनि उनसे प्रसन्न होते हैं, बोलते कुछ भी वर मांगो मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूंगा। फिर दिति ने बोला कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर दे। ये सुनकर कश्यप मुनि को बहुत शोक हुआ, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और माता दिति को बोला कि निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूरी होगी, उसके लिए आपको एक पुंसावन व्रत का पालन करना पड़ेगा जो कि पूरे एक वर्ष का होगा। पुंसावन व्रत वास्तव में वैष्णव एक जिसे कहते हैं रिचुअलिस्टिक संस्कार है, वैष्णव संस्कारों की एक विधि है। तो उसमें पूरे एक साल तक अगर इसका पालन करेंगे सही ढंग से तो आपके गर्भ से वो पुत्र उत्पन्न होगा जो इंद्र का वध कर देगा। लेकिन इस व्रत के पालन में थोड़ी सी भी कमी रही तो ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो इंद्र का मित्र होगा। माता दिति ने इस योजना को स्वीकार किया और उनसे पूछा कि इस व्रत में मुझे क्या क्या करना है। कश्यप भगवान मुनि ने बताया कि इस व्रत में बहुत सी उन्होंने विस्तार में बताया कि किस समय आपको उठना है, कैसे आपको अपने आप को साफ सुथरा रखना है, बाल खुले नहीं रखने, खाने के बाद हाथ पैर धोने हैं, स्वच्छ वस्त्र डालने हैं, किसी से क्रोध नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना, किसी को गाली नहीं देना, किसी की निंदा नहीं करना, और शाम के समय अकेले बाहर नहीं निकलना, किन स्त्रियों का संग करना है, किन स्त्रियों का संग नहीं करना, क्या क्या प्रार्थनाएं करनी है, पूरा विस्तार में बताया। और बोला इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाएगी तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो दिति माता बहुत आराम आराम से एक एक चीज का पालन कर रहे थे। वहां इंद्र को मालूम चल गया कि दिति की ये योजना है, तो इंद्र घबरा गए, क्योंकि इस बौद्ध जगत का सबसे पहला नियम है सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपनी रक्षा करो। ये नहीं देखना कि कौन माँ है, कौन बाप है, कौन मौसी है। मौसी है, माँ जैसी है, लेकिन ये क्या सोच रही है, मेरा वध करने के लिए तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। इंद्र ने भी क्या किया, एक नौकर बन के आ गए माता दिति के पास और बिल्कुल बहुत ही शुद्ध भावना से उनकी सेवा करने लगे, ऐसे जैसे बहुत ही आज्ञाकारी सेवक हो। और माता दिति का पूरा विश्वास जीत लिया और इंद्र ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब थोड़ी सी चूक हो और अपना मैं काम कर दो। तो माता दिति बड़ी शक्ति से व्रत का पालन कर रही है और इंद्र मौके की तलाश में है। तो एक बारी माता दिति ने संध्या के समय भोजन करने के बाद बिना हाथ पैर धोए, क्योंकि वो थक गई थी, इतना ज्यादा तपस्या कर रही थी, दुबली पतली हो गई थी, कमजोर हो गई थी, तो ध्यान नहीं रहा, खुले बालों के साथ बिना हाथ पैर धोए संध्या के समय वो सो गई। बस ये एक उनसे कमी हो गई। इंद्र के पास योगिक सिद्धियां थी, उन्होंने बिल्कुल सूक्ष्म बन के दिति के घर में प्रवेश किया और दिति के घर में जो भ्रूण था उसके उन्होंने 7 टुकड़े कर दिए अपने वज्र से। लेकिन वो जो 7 टुकड़े थे वो मरे नहीं, वो 7 टुकड़े जोर जोर से रोने लगे कि हमें मारिए मत, हमें मारिए मत, मा रुता। तो इंद्र ने बोला रो मत, चुप हो जाओ। उसने जो 7 टुकड़े थे उसका फिर से वध किया, तो 7 इंतु हर एक का फिर से 7-7 टुकड़े कर दिए, तो टोटल 49 हो गए। तो 49 के 49 मारुत बने, ये वायु के देवता बने मारुत। सबके सब कहने लगे कि आप हमें क्यों मार रहे हैं, हम तो आपके ही भाई हैं। जब ये इंद्र ने सुना तो इन्होंने बोला ठीक है, अब तुम्हारी को डरने की कोई बात नहीं है, तुम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। और जब फिर माता दिति वापस होश में आती है तो क्या देखती है कि उनके सामने एक पुत्र नहीं 49 पुत्र हैं और सबके सब अग्नि की त्वरा प्रज्वलित। तो ये देखकर वो बहुत खुश हुई और उसने बोला मैंने तो व्रत रखा था इंद्र तुम्हें मारने के लिए। साफ साफ उसने बता दिया कि इंद्र तुम्हें मारने के लिए मैं व्रत का पालन कर रही थी, तो ये एक पुत्र की जगह 49 पुत्र कैसे आ गए। तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे पुत्र हो, सच सच बताओ, झूठ मत बोलना। किसने बोला? दिति ने इंद्र को। और इंद्र ने भी बोला माता दिति आप मुझे मारने के लिए व्रत कर रहे थे और मैं यहां मौका ढूंढ रहा था आपके गर्भ को मारने के लिए, इसलिए मैं आपको नौकर बन के आया था। तो प्रभुपा बता रहे हैं ये है, देखिए दोनों के मन में द्वेष था, लेकिन जैसे ही वो भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं कितना ओपनली वो बोल रहे हैं, हालांकि वो शत्रु थे। माता दिति ने बोला कि मैं तुम्हें मारने की योजना बना रही थी, इंद्र ने स्वीकार किया हाँ मैं आपको आपके भ्रूण को मारने की योजना बना रहा था। तो उसके बाद दोनों में पूर्ण रूप से मित्रता हो गई। माता दिति बहुत प्रसन्न थी कि उसको एक पुत्र की जगह 49 इतने सुंदर पुत्र प्राप्त हो गए। और उसके बाद जो इंद्र हैं उन्होंने वर्णन करना शुरू किया, उन्होंने कहा कि जब मैंने इस भ्रूण को मारने का प्रयास किया और 1 के 7 और 7 से 49 बन गए तो मैं समझ गया कि ये आपकी भक्ति का प्रभाव है, लेकिन ये आपकी भक्ति का मुख्य प्रभाव नहीं है, ये आपकी भक्ति का साइड इफेक्ट है। यहाँ पे बता रहे हैं कि अनुषांगिक फल है। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव, ये आपकी भक्ति का, भक्तिपूर्ण सेवा का अनुषांगिक फल है, सेकेंडरी रिजल्ट है। आपने इतना अच्छा व्रत किया, आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए, तो उसका ये अनुषांगिक सेकेंडरी साइड इफेक्ट है कि आपके गर्भ में जो भ्रूण था उसकी रक्षा हो गई। वास्तव में उन्होंने बोला कि जो भक्ति का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, अगले श्लोक में बताते हैं कि यद्यपि श्री भगवान की उपासना में ही निरत रहने वालों को भगवान से किसी प्रकार की भौतिक इच्छा, यहां तक कि मुक्ति की भी कामना नहीं रहती, तो भी भगवान श्री कृष्ण उनके समस्त कामनाओं को पूरा करते हैं। भक्ति का मुख्य लक्ष्य है कि हम भगवान की बिना किसी इच्छा के सेवा करें। अगर कोई भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में इच्छाओं के साथ भी जुड़ता है तो इंद्रदेव कह रहे हैं कि भगवान उन इच्छाओं को भी पूर्ति करते हैं। फिर आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं? आराध्य आत्म प्रदम देवम स्वात्मानम जगदीश्वरम को वर्णित गुण स्पर्शम बुद्धा स्यात् नरके पियत। बोल रहे हैं समस्त कामनाओं का अंतिम लक्ष्य श्री भगवान का दास बनना है, ये श्री प्रभुपाद जी का भावार्थ है। यदि कोई बुद्धिमान मनुष्य अपने भक्तों को आत्मसमर्पित करने वाले परम प्रिय भगवान की सेवा करता है तो वह भौतिक सुख की कामना कैसे कर सकता है जो कि नरक में भी प्राप्य है। बहुत सुंदर इसका ये अनुवाद है और प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। कह रहे आराध्य आत्म प्रदम देवम स्वात्मानम जगदीश्वरम। तो यहां भगवान के 3 गुण बताए गए हैं। सबसे पहले भगवान जगदीश्वरम पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है। स्वात्मानम, स्वात्मानम का मतलब जैसे स्वमानम, जैसे हम अपने आप को बहुत प्रिय हैं वैसे भगवान बहुत प्रिय हैं। और तीसरा है आत्मप्रदम, भगवान अपने आप को समर्पित कर देते हैं। किसको समर्पित करते हैं? जो उनकी भक्ति करता है। देखिए ये भगवान का सबसे महत्वपूर्ण गुण कि भगवान अपने आप को अर्पित कर देते हैं। भक्त भगवान को बताया गया है शास्त्रों में एक चुल्लू भर पानी में और एक तुलसी का डल डाल के भगवान भक्ति भाव से प्रेम को, प्रेम से अगर भगवान को ये अर्पित करता है, क्या चुल्लू भर पानी और एक तुलसी का दल, और भगवान अपने आप को उसको समर्पित कर देते हैं, भगवान अपने आप को बेच देते हैं, कहते मैं ऋणी हो गया आपका। ये भगवान का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। भगवान के अनंत गुणों में से 64 महत्वपूर्ण गुण है, और 64 गुणों में से एक गुण है भक्त वत्सल। भक्त वत्सलता के कारण भगवान अपने आप को अर्पित कर देते हैं। भगवान ने, जैसे कि हम देखते हैं अभी गौर पूर्णिमा का उत्सव था, अद्वैताचार्य जी ने क्या किया, शालिग्राम शिला में गंगा का जल डाला और तुलसी से केवल भगवान की पूजा की, और रो रो कर हृदय से उनको पुकारा, और भगवान ने अपने आप को प्रदान कर दिया। भगवान उनके सामने हम सब के उद्धार के लिए प्रकट हो गए। जब चैतन्य महाप्रभु शिवा सांगन में नृत्य करते थे, संकीर्तन करते थे, तो एक बार उनके पुत्र की मृत्यु हो गई शिवास ठाकुर के, उनको मालूम ही चला, लेकिन उन्होंने जाके घर की स्त्री को बताया, खबरदार कोई रोएगा नहीं, महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं, महाप्रभु के संकीर्तन में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। सब स्त्रियां चुप हो गई, 7 घंटे तक कीर्तन करते रहे। उसके बाद महाप्रभु ने बोला कुछ गड़बड़ है, तो शिवास ठाकुर ने बोला जहां आप संकीर्तन कर रहे हो वहां कुछ अशुभ कैसे हो सकता है। लेकिन फिर महाप्रभु ने कुछ तो गड़बड़ है। फिर दूसरे भक्तों ने बताया कि शिवास के पुत्र की मृत्यु हो गई। जब ये चैतन्य महाप्रभु ने सुना, चैतन्य महाप्रभु रोने लगे और उन्होंने बोला शिवास तुमने मुझे खरीद लिया है। इस ढंग से भगवान ने अपने आप को समर्पित कर दिया, और फिर वो मालिनी देवी के पास गए और उस पुत्र को उन्होंने जीवित कर दिया। वो बोला हे जीवात्मा तुम कहाँ जा रहे हो, तो उस पुत्र ने जीवित होकर बोला कि मैं तो आपका सनातन अंश हूँ, कृपया करके मुझे अपनी सेवा में लगाए रखें। ये कह के वो दोबारा से मृत अवस्था में चला गया। तो मालिनी माता का शोक दूर हो गया और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अब से मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। तो और नित्यानंद प्रभु बोला कि मैं भी तुम्हारा पुत्र हूँ। तो चैतन्य और नेताय गौर नेताय उनके 2 पुत्र हो गए। तो भगवान अपने आप को समर्पित कर देते हैं, आत्मप्रदम भगवान अपने आप को दे देते हैं। और भगवान को खरीदने के लिए कोई बहुत बड़े धन की आवश्यकता नहीं है, भगवान को खरीदने के लिए केवल प्रेम रूपी धन की आवश्यकता है। भक्ति रूपी और प्रेम रूपी धन से कोई भी भक्त भगवान को खरीद सकता है। भगवान अपने आप को देने को तैयार है, इजिली अवेलेबल, सुलभम पार्थ, भगवान गीता में बताते हैं। यहां पर हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में एक MLA के पीछे या एक लोकल काउंसलर के पीछे हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक उसका एक अपना कुछ अटेस्ट कराने के लिए, डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने के लिए कितने आगे पीछे हम घूमते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई हमें थोड़ा सा टाइम दे दे, बोले बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने अच्छे VIP व्यक्ति हैं, आपने हमारी बात सुन ली है। और यहाँ पर तो जगदीश्वरम पूरे ब्रह्मांड के स्वामी अपने आप को अर्पित कर देते हैं पूर्ण रूप से भक्त के आगे। तो ऐसे भगवान, तो इंद्र कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे भगवान की सेवा करेंगे जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं। फिर ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो कि इस भौतिक सुखों से भगवान के से कामना करेगा भौतिक सुखों के लिए। जब भक्ति करते ही भगवान अपने आप को समर्पित कर देते हैं, फिर आगे बताते हैं को वर्णित गुण स्पर्श बुद्धा स्या नर के पियत। बुद्धिमान व्यक्ति तो केवल भगवान की इसीलिए भक्ति करेगा प्रेम के लिए, कौन फिर भगवान से भौतिक सुख मांगेगा, कौन मांगेगा। और प्रभुपाद बता रहे हैं दिस इज अ रियल टेस्ट ऑफ अ डिवोटी, ये एक भक्त का असली परीक्षा है कि किसी भी परिस्थिति में वो भगवान से भौतिक सुखों की कामना नहीं करेगा, कैसी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए। हम देखते हैं हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर को बुलाया गया कि आप मुसलमान परिवार में जन्म लेके क्यों एक हिंदू भगवान का काफिर हो, आप हरे कृष्णा बोलते रहते हो, आपको 22 बाजारों में पीटा जाएगा। तो हरिदास ठाकुर जी ने क्या बोला, खंड खंड है देह यदि जाए प्राण तबो आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम। खंड खंड है देह यदि जाए प्राण, आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दो, तभी आमी वदने ना जाड़ छाड़ी हरि नाम, अपनी जीवा से मैं हरि नाम छोड़ूंगा नहीं। मैं बोला बहुत जिद्दी है, ले जाओ इसको 22 बाजारों में खूब पिटाई करो। बड़े बड़े जैसे कहते हैं गुंडे आ गए और खूब हरिदास ठाकुर की पिटाई कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर ने यह नहीं बोला अरे भगवान क्या कर रहे हो, 192 माला करता था आपकी, 16 18 माला नहीं, 192 माला तीन नाक नाम लेता था, और जब तक 192 माला हो ना जाए पानी तक नहीं पीता था। ये क्या क्या दे रहे हो, ये हर्ष हो रहा है मेरा, 22 बाजारों में पीटा जा रहा है घसीट घसीट के, है ये क्या हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं बोला, वो ये कह रहे थे जो मुझे पिटाई करें भगवान इनको माफ कर दो। भगवान से क्या होगा, भगवान का क्या रिएक्शन होगा जब एक भक्त जो उनके नाम लेता है इतनी पिटाई हो रही है। आदि पुराण में भगवान अर्जुन को बताते हैं, हे लया श्रद्धया नाम रटनते मम जंतव तेषा नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय ममा, कि कोई श्रद्धा से या मजाक उड़ाते हुए भी मेरा नाम ले लेता है तो क्या होता है, तेषा नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय ममा, ऐसे जीव का नाम मेरे हृदय में हमेशा छप जाता है, मैं उसको भूलता नहीं हूं। कोई मजाक उड़ाते उड़ाते भी एक बार कृष्ण बोल दे, भगवान नोट कर लेते, अरे किस जीवात्मा ने मेरा नाम लिया, उसका नाम मेरे हृदय में समा जाता है। और यहां हरिदास ठाकुर 300,000 रोज नाम लेते थे और उनकी अब पिटाई हो रही है, 22 बाजारों में घसीट घसीट उनको पीटा जा रहा है। भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, लेकिन जब सुदर्शन चक्र उन लोगों का वध करने के लिए गया तो उन्होंने क्या सुना, सुदर्शन चक्र ने हरिदास ठाकुर की प्रार्थना सुनी कि हे कृष्ण इनको क्षमा कर दो, सुदर्शन चक्र वापिस आ गया। अब भगवान क्या करेंगे, भगवान के पास एक ही उपाय था, भगवान ने हरिदास ठाकुर के शरीर को ढक लिया और जितने भी कोड़े पड़ रहे थे उन्होंने अपने पीठ पर सहे, और जब महाप्रकाश लीला हो रही थी चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पीठ करके हरिदास ठाकुर को दिखाई कि देखो वो कोड़े के निशान मेरे पीठ पर है। ये भगवान के गुण हैं आत्मप्रदम, और भक्तों के भी यही गुण हैं, उन्होंने किसी भी विषम परिस्थिति में भगवान से अपने सुख की वासना नहीं की। प्रहलाद महाराज के इतने कष्ट दिए गए, प्रहलाद महाराज ने ये नहीं बोला रे भगवान कुछ तो रक्षा करो, नहीं, वो हमेशा भगवान का स्मरण करते रहे। तो हम जिससे भी जैसे विषम से विषम परिस्थिति में हो, एक शुद्ध भक्त भगवान के सामने खड़े होकर ये नहीं बोलेगा कि काम धंधा नहीं चल रहा कुछ तो करवा दो बहुत परेशान हूं, लड़की की शादी नहीं हो रही कोई स्त्री खड़ी हुई अच्छा वर दिला दो, उनको बुद्धिमान व्यक्ति इस चक्र में पड़ेगा ही नहीं, वो कहेगा भगवान प्रॉब्लम जो मर्जी रहे बस मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि मेरा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे, मैं कभी आपके नाम को ना भूलूं, कृष्णेर्मति अस्तु, ये असली आशीर्वाद है, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए कैसी भी परिस्थिति हो मैं मेरा मन स्थिर रहे। वी शुड प्रे फॉर फिक्सिंग अवर माइंड नॉट प्रे फॉर फिक्सिंग अवर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी लेकिन मेरा मन स्थिर हो जाए आप में, ये मन बहुत तंग करता है मुझे। और भक्त लोग बुद्धिमान होते हैं बहुत चतुर होते हैं, उनको मालूम है भौतिक सुख मांगने का लाभ ही क्या है, कितना सुंदर शब्द इंद्र ने यूज किया है, भौतिक सुख के लिए कौन सा शब्द यूज किया है, गुण स्पर्शम, ये भौतिक सुख क्या है, गुण स्पर्शम, गुण का अर्थ है इंद्रिया, जब इंद्रिया स्पर्श करती है किसको, इंद्रिय के विषयों को, बस भौतिक सुख की गहराई इतनी है स्पर्श मात्र, स्किन डीप, बस अंदर गंदगी गंदगी है। तो भैया क्यों इस चक्कर में पड़ूं, यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनिया ये वये आदि अंत वंतु कौन्तेय नातेषु रमते बुधा, भगवद्गीता 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, संस्पर्श जा भोगा, बड़ा ग्राफिक एग्जाम्पल भगवान समझा रहे हैं, क्योंकि बद्ध जीव स्थूल धी का होता है मोटी बुद्धि का, जब तक प्रत्यक्ष समझाओ ना ये हो रहा है देखो क्या होगा। तो भगवान ने संस्पर्श जा भोगा, संस्पर्श जा इंद्रिया इंद्र विषय स्पर्श हुआ, क्या हो गया, दुख योनिया वते, दुख की उत्पत्ति हुई, आंखों से सुंदर रूप देखा आहा अच्छा लग रहा है, दुख की उत्पत्ति हुई, एक त्वचा को दूसरे वचन से घसीटा रगड़ा टच किया आहा सुख मिलेगा, दुख की उत्पत्ति हो रही है, कानों में कुछ अच्छा सुन लिया म्यूजिक आहा सुख नहीं दुख, और ये हमारा भ्रम है कि हम दुख को सुख समझते हैं सुख को दुख समझते हैं, असत्य रे सत्य करनी मानी नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं। तो ये गुण स्पर्श, ये जो भौतिक सुख है केवल इंद्रियों के स्पर्श मात्र से है, ये तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये तो केवल भ्रम है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इसमें क्यों फंसेगा, मैं क्यों मांगू भगवान से, मैं मांगूंगा ही नहीं, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो भक्त किसी भी स्थिति में ऐसा सुख नहीं मांगता। वास्तव में ये जो भौतिक सुख है आप देखें, तो क्या है कि जितने भी ये छिद्र हैं, इन छिद्रों को भरने से हमें भौतिक सुख की एक आभास होता है। आंखों को छिद्र को भरना, कानों को, नासिका को, मुंह को, तो बोले वाह। लेकिन इन छिद्रों को जितना भरेंगे, ये छिद्र हमेशा भूखे रहते हैं। कितने समोसे, कितने गुलाब जामुन, कितने पिज्जा खा गए हम, अभी भी ये भूखा है। कितने तरह तरह के रूप देख लिए आंखों ने, अभी भी भूखी है। कितनी अपनी तारीफें सुन ली, अभी भी कम लगती हैं, है ना। कितनी तरह तरह के परफ्यूम लगा लिए, डिओड्रेंट लगा लिए, अभी भी नाक अभी भी संतुष्ट नहीं है। कितने तरह का आपने मैथुन कर लिया, अभी भी कोई संतुष्ट नहीं है। इन छिद्रों को जितना भर लो, ये भूखे ही रहेंगे। ये छिद्र तभी संतुष्ट होंगे, जितने भी ये छिद्र हैं, ऑल दिस होल्स शुड बी फिल्ड विद कंप्लीट होल। कंप्लीट होल मीन्स कृष्णा, है ना। आंखों में कृष्ण को भर लो, कानों में कृष्ण को भर लो, नासिका में कृष्ण को भर लो, मुंह में कृष्ण को डालो, बस फिर मिलेगी संतुष्टि। बहुत साल पहले महाविष्णु स्वामी महाराज ने मायापुर में सेमिनार किया था, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द रियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो कृष्णा भावना में रहता है, असली इंद्र तृप्ति ये है, बाकी धोखे वाली इंद्र तृप्ति है। क्योंकि बाकी सब है झूठ। आदि अंत वंतु कौन्तेया नातेषु रमते बुधा, उसका शुरुआत है, उसका अंत है, इसके पीछे पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, क्या लाभ। असली सुख, सुख चाहिए ना, सुख चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं आनंद बिना इंद्र तृप्ति के तो आ ही नहीं सकता। मायावादी लोग बोलते हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नेति नेति नेति, सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है। लीन हो जाओ, भूल जाओ, अपने आप को मार दो, खत्म कर दो, अस्तित्व ही खत्म कर दो, कुछ ना प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, मैं हूं ही नहीं, खत्म हो गया, शून्य में लीन हो गया, कुछ नहीं। नहीं, आनंद चाहिए तो इंद्र तृप्ति करनी पड़ेगी, बिना इंद्र तृप्ति के आनंद कैसे हो सकता है। सही बात है, अच्छा खाएंगे तभी आनंद आएगा, अच्छा देखेंगे तभी आनंद आएगा, लेकिन असली चीज देखें, असली चीज खाएं, असली चीज सुने, तब आनंद आएगा। तो असली क्या है, परम सत्य। क्या है, परम सत्य धीमही। भागवतम की शुरुआत ही यही है, मेडिटेट ऑन द एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य, उसके वो हमारे को असली इंद्र तृप्ति देंगे, वो हमें गोविंद, जो हमारी इंद्रियों को आनंद देंगे। तो भक्त लोग जो बुद्धिमान है, वो इन चक्रों में नहीं पड़ते, किसी भी परिस्थिति में वो भगवान से भौतिक सुख की अभिलाषा नहीं करेंगे। तो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, प्रभुपाद कह रहे हैं समस्त कामनाओं का अंतिम लक्ष्य श्री भगवान का दास बनना है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। प्रभु जी आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्णदास बनना है। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्णदास बनना है। सातवीं कक्षा में हमारे हिंदी की एक पुस्तक थी, उसमें एक टॉपिक था, एक चैप्टर था, मैं किसान बनूंगा। तो हमारे स्कूल के अध्यापक ने पहले सबसे खड़ा किया, बेटा तुम क्या बनना चाहोगे, मैं डॉक्टर, तुम क्या बनना चाहोगे इंजीनियर, तुम क्या बनना चाहोगे पायलट। वो बहुत रो पड़े, देखो कितने दुर्भाग्य की बात है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, आप में से किसी ने नहीं बोला कि वो किसान बनना चाहता है। मैं किसान बनूंगा, कोई नहीं कह रहा, लेकिन ना किसान बनना है, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ना डॉक्टर बनना है, ना इंजीनियर बनना है, हमें क्या बनना है, कृष्णदास बनना है। सभी कामनाओं की अंतिम अभिलाषा कृष्णदास बनना है, टॉप मोस्ट पोजिशन। वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं मोस्ट रेयर, बहुत दुर्लभ और सर्वोत्तम स्थिति है जीव की, कृष्णदास, मोस्ट रेयर एंड सर्वोत्तम। यहां पे भारत में सबसे बड़ी नौकरी किसको माना जाता है, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। क्या है, प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं। अरे प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी क्या क्या है, प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी बनने से क्या हो जाएगा, कागज लेके घूम रहे, ऊपर लिखा है TST, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट, उसके अंदर क्या है, बस न्यूक्लियर बम कहां छिपाया हुआ है, क्या कोडवर्ड है, जो स्विस बैंक अकाउंट का क्या कोडवर्ड है, यही है। उससे क्या हमें एक्सटेसी मिल जाएगी, नहीं। अगर हम कृष्णदास बनेंगे तभी हमारे पास एक TSD होगा, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट। राधा रानी संदेशा भेज रही है कि कृष्ण से कहां मिलना है। सीक्रेट, सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट। भगवान अपने ग्वाल बालों को भेज रहे हैं, अब कौन से घर में माखन चुराना है, क्या क्या शरारत करनी है, ये है असली सीक्रेट। इसमें आनंद है, इसमें एक्सटेसी है। अरे कहां न्यूक्लियर बम छपाया है, पाकिस्तान के स्पाई कहां पे हैं, कहां पे स्पाई करना है, इसमें क्या है, टेंशन ही टेंशन है। कोई भी तरह का धन, कोई भी तरह की पोस्ट, कोई भी तरह की पावर, किसी भी तरह का यश आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता। आत्मा को एक्सटेसी चाहिए और ये सब आत्मा की ऐसी तैसी कर देते हैं। एक्सटेसी और ऐसी तैसी में बहुत अंतर है। हमें एक्सटेसी चाहिए, एक्सटेसी, ऐसी तैसी नहीं, एक्सटेसी। ओ एक्सटेसी केवल कृष्ण की भक्ति में आ सकती है। करके देख लो, अपने एक्सपीरियंस देख लो। दसवीं क्लास में थे, फिटजी ज्वाइन किया, बड़े कंपटीशन करके आईआईटी में जाऊं, बन गया आईआईटी में। क्या हुआ है? क्या हुआ? भक्त लोग बोलते आईआईटी मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ इनफाइनाइट टॉर्चर, असीमित दुख ही दुख। उसके बाद नौकरी, नौकरी नहीं मिलती। प्रभु बोलते गले पे फटका लगा के घूमते रहते हैं, मेरे को लगाओ, मेरे को लगाओ। मैं बुरा मत मानी, प्रभु लेकिन डॉगिश मेंटेलिटी, नौकरी के लिए बेचारे धक्के खा रहे हैं इधर उधर। ले लो, कोई तो ले लो, कोई तो ले लो। क्या है ये? अगर मिल भी गई, उसके बाद मिल भी गई तो एक्सटेसी आई उसकी, और ऐसी तैसी हो गई। बेचारा रात रात भर काम करता है, 18-18 घंटे काम करना पड़ता है कुछ रुपयों के लिए। बताओ क्या ये जीवन है? आप सोचिए, मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं मनुष्य जीवन उससे कर रहे, कोई बड़ा ही बनने के लिए नहीं मिला, कोई डॉक्टर बनने के लिए नहीं मिला, कोई वकील बनने के लिए नहीं मिला। मनुष्य जीवन मिला है अपने इस जीवन को संकीर्तन यज्ञ में आहुति देने के लिए, समर्पित करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के दासों का दास बनने के लिए। ये हमारी सभी कामनाओं की अंतिम अभिलाषा है, चाहे हम किसी भी आश्रम में हो क्यों ना हो। जो ग्रस्त आश्रम में होंगे, मेरे लिए नहीं है ये बात। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं 108 इंस्ट्रक्शंस दे गए, एवरीवन शुड डिजायर द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। हर किसी की ये इच्छा होनी चाहिए कि जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, चाहे वो स्त्री की देह में है, चाहे वो पुरुष की देह में है, चाहे वो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, ग्रस्त है, वानप्रस्थ है, मनुष्य है। अगर मनुष्य है तो उसको जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह असली बुद्धिमता है। भागवत के पांचम स्कंद में नारद मुनि व्यास देव वो कहते हैं तस्व हेतु प्रत्येत कोविदो। अगर कोई अपने आप को कोविदो मीन्स बहुत बुद्धिमान कहता है, फिलोसफिकली इंक्लाइंड है, प्रभुपाल लिख रहे हैं, बड़ा सिद्धांत की चर्चा करना जानता है, उसको क्या करना चाहिए? तस्व हेतु प्रत्येत कोविदो, उसके प्रत्येक प्रयास कैसे होने चाहिए? ना लभ्यते यद् भ्रमेता उपरी अधा। उसको ऐसी वस्तु के लिए प्रयास करना चाहिए जो ऊपर से लेकर नीचे भ्रमण करने तक कहीं ना मिले, जो कि आउट ऑफ वर्ल्ड हो, इस ब्रह्मांड की हो ही ना। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, बोले इस चीज से संतुष्ट नहीं होता, करोलबाग से ले आए, कनॉट प्लेस से ले आए, यहां से नहीं, दिल्ली की किसी वस्तु नहीं, बॉम्बे की कोई वस्तु नहीं, अमेरिका की वस्तु, हाँ उससे संतुष्ट। बुद्धिमान कहे अमेरिका की वस्तु से भी नहीं, स्वर्गलोक की वस्तु से भी नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड से परे, आउट ऑफ दिस मटीरियल क्रिएशन, वो चीज चाहिए हमें, उसके लिए प्रयास करना है। द मोस्ट रेयर गिफ्ट, गोलोकर प्रेम धना हरिनाम संकीर्तना। तस्य हेतु प्रत्येत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमेताम् उपरि अधा, तल्लभ्यते दुखवाद अन्यता सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रहंसा। अरे क्योंकि इस संसार में जो प्रयास कर रहे हैं, जो सुख मिलना है वो वैसे ही मिल जाएगा, जैसे कि बिना बताए दुख आ जाता है, वैसे ही जो हमारे कोटे में सुख है वो तो आ ही जाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति उसके लिए प्रयास ही नहीं करता, बुद्धिमान उस चीज के लिए प्रयास करता है जो इस संसार में उपलब्ध ही नहीं है, जो इस संसार की है ही नहीं, ब्रह्मलोक से लेकर नीचे के लोक तक जाने के बाद ही वो नहीं मिलते। ये हमारे जीवन का एम्बिशन होना चाहिए, कृष्ण दास बनना है। और दास बनने का अर्थ क्या है? वृंदावन ठाकुर बताते हैं कोई भौतिक इच्छा नहीं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयी। ना मुझे धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, क्या? मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतु की त्वयि, मुझे आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। इस अहेतु की भक्ति में बहुत आनंद है। आप कहेंगे ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन अब मुझे चाहिए कुछ, अब जबरदस्ती मैं कैसे भौतिक इच्छाओं को दबाऊं। और हम सब भगवान की भक्ति में आए थे किसी ना किसी इच्छा के साथ। आप में से कोई ऐसा भक्त आया था जो भगवान की अहेतु की भक्ति करना चाहता था? किसी को शब्द मालूम ही था अहेतु की भक्ति? हम तो मंदिर में आते किस लिए थे? मंदिर में इसलिए आते थे इच्छा पूरी कर दो, भगवान बहुत दुखी हो, है ना, बचा लो, कुछ तो करो, है ना, आंखें बंद करके खड़े रहते थे, है ना। यहाँ आए, इस कौन में आए, अच्छा देखते भी हैं भगवान को, अच्छा दर्शन भी करते हैं, पता ही नहीं होता था, आंखें बंद खड़े हो जाते थे बस, है ना। तो बताया गया दर्शन करते हैं, कुछ संबंध है कुछ ऐसे, है ना। तो ये सब प्रभुपाद जी कृपा है, हम आए इन इच्छाओं के साथ हैं। और हम इसे कितने भक्त यहाँ कह सकते हैं कि हमारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है प्रभु जी, कोई कह सकता है? कोई कह सकता है? नहीं है। तो आप जो ये बातें कर रहे हैं कहने में तो अच्छी लग रही है, प्रैक्टिकल नहीं है। कहाँ है प्रैक्टिकल? परेशान हो भैया, खाने को रोटी नहीं है, धंधा चल नहीं रहा, सारी किस्तें भरनी है, आप बोल रहे हेतु की भक्ति। फोन आ रहे हैं जबरदस्त, लोन चढ़ा पड़ा है सर पे, बोले हेतु की भक्ति करो। क्या कोई तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताओ, हम तो ठाकुर जी के उसी पास आते हैं भाई, कुछ कुछ लगाओ ऐसा तिकड़म बाजी, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, जगदीश है आप तो, कुछ ऐसा घुमाओ कुछ कि बढ़िया सा एकदम डील हो जाए और सब कुछ बढ़िया सेटल हो जाए, शॉर्टकट बताओ कुछ। तो हम तो इसीलिए आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भागवत दूसरे स्कंद में बताया गया, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उधार दी तीव्रेण भक्ति योगे न ये पुरुषम परम। चाहे किसी भी तरह की इच्छा नहीं है या बहुत इच्छा है या मोक्ष की इच्छा है, क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम, कि हमें बहुत तीव्रता से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। चाहे हम भौतिक इच्छाओं के साथ आए भी हैं, लेकिन क्या होगा कि धीरे धीरे शुद्ध भक्तों के संपर्क में आकर हमें अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो जाना चाहिए। जो हमारी भौतिक कामनाएं पूर्ण हो भी जाते हैं, भगवान की हम तीव्रता से भक्ति करेंगे तो क्या होगा कि भगवान हमारी इच्छा इस रूप से पूरी करते हैं कि हमारी इच्छा भी पूरी हो जाती है और हृदय भी शुद्ध हो जाता है। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? प्रभुपाद ने पिछले श्लोक में लिखा था कि उसको पूर्ण रूप से भक्ति करनी होगी, फुल डिवोशनल सर्विस प्रभुपाद ने लिखा था, पूर्ण रूप से भक्ति में निरत रहना पड़ेगा तीव्रण। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं माता दिति की क्या कितनी गलत इच्छा थी, कि वो इंद्र का वध करने के लिए एक पुत्र की इच्छा रख रही थी, लेकिन कश्यप उन्होंने कोई पुंसावन व्रत बताया और बहुत से नियम बता दिए। माता दिति ने क्या किया? फिर तीव्रता से उसका पालन किया। तो तीव्रता से भक्ति करने का अर्थ है कि ध्यान पूर्वक श्रवण कीर्तन करना। तीव्र भक्ति योगिन का अर्थ है अटेंटिव। माता दिति बहुत अटेंटिव थी, एक एक नियम का बहुत ध्यान पूर्वक पालन कर रही थी। इसलिए हो सकता है हम भक्ति में भौतिक इच्छाओं के साथ आए हैं, लेकिन इसके साथ कंटिन्यू करना ये समझदारी नहीं है। भौतिक इच्छाओं को बनाए रखना समझदारी नहीं है। वेदों में कहा गया है कामोकर्षित, काम से आकर्षित होता है एक तुच्छ जीव, स्फुलिंग, एक उसके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है कि इस भौतिक प्रकृति के ऊपर अपना वो प्रभुत्व जमाए, तो कामोकर्षित, तब वो इस संसार में उसका पतन होता है और तरह तरह से प्रयास करता रहता है प्रभुत्व जमाने की अलग अलग योनियों में, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती। हमारी जो इच्छा है सर्वदा सर्वत्र प्रसन्न रहने की, ये इच्छा एंटी मटेरियल है, ये संसार में इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती, लेकिन हम उस अपने दिव्य इच्छा को, आध्यात्मिक इच्छा को इस भौतिक वातावरण में पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि कभी भी संतुष्ट नहीं होगी। भौतिक इच्छाएं हम जितनी संतुष्ट करेंगे उतना हम फ्रस्ट्रेट होंगे, और आध्यात्मिक इच्छा हम थोड़ा सा भी संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे हमें वो आनंद देगा। भौतिक सुख को यहां बोला गया गुण स्पर्श, केवल स्पर्श मात्र है, और आध्यात्मिक सुख बोला गया आनंदम बुद्धि वर्धनम, ये आनंद का सागर है जो कि बढ़ता ही जाता है। तो आध्यात्मिक इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं तो हमें सुख मिलेगा, भौतिक इच्छा के लिए प्रयास भी करते रहेंगे तो हम दुखों की ही प्राप्ति होगी। तो हो सकता है श्री कृष्ण की शरण में हम, भगवान की शरण में हम भौतिक इच्छाओं के साथ आए हों, उसमें दिक्कत नहीं है। भगवान बता रहे हैं कि सबके सब वो पुण्य आत्माएं हैं, लेकिन अब हमें भक्ति की विधि का पालन बहुत ही तीव्रता से करना चाहिए, ढीले ढाले ढंग से नहीं। और तीव्रता का अर्थ है कि भक्ति के प्रत्येक नियम का बहुत ही ध्यान पूर्वक हमें पालन करना चाहिए, ध्यान पूर्वक हमें जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और इन भौतिक इच्छाओं को बनाए रखेंगे तो क्या होगा? हम भक्ति का आनंद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि हम काफ़ी साल हो गए फिर भी हमें आनंद नहीं मिल रहा, हमारा हृदय वैसे ही अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि हमने सही ढंग से भक्ति के नियमों का पालन नहीं किया। यहाँ माता दिति को कितने वर्ष हुए पुंसावन व्रत का पालन करते हुए? एक वर्ष भी नहीं हुआ, और माता अदिति का हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। उसका शत्रु इंद्र उसके सामने खड़ा है और उसको साफ साफ माता अदिति ने बोल दिया कि मैं तुम्हें मारना चाहती थी। और इंद्र ने बोल दिया, हाँ मैं भी आपके बेटे को मारना चाहता था। फिर माता अदिति ने उसको माफ कर दिया, जाओ। वो भी खुश। पूर्ण रूप से हृदय द्वेष से रहित हो गया, क्योंकि उसने कश्यप मुनि की आज्ञा का सख्ती से पालन किया। इसलिए हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज बताते हैं, चैंटिंग इज नॉट द सोल्यूशन, अटेंटिव चैंटिंग इज द सोल्यूशन। केवल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, समस्या समाधान हो गई, मेरी समस्या का समाधान हो गया, माला करनी थी, सबसे बड़ी समस्या थी ना, चैंटिंग इज द सोल्यूशन हो गया, सबसे बड़ी समस्या निपट गई। नहीं, अटेंटिव चैंटिंग इज द सोल्यूशन। मुकुंद माला स्त्रोत्र में बताया हुआ है, जो हरि नाम है ये काम वासना को टॉर्चर करता है। एक बारी भगवान हमारे हृदय में घुस गए, फिर वो अपनी जगह बनाते हैं, हटो सब, सर तरह की डिजायर्स पीछे हट जाओ सब। फिर भगवान आराम से हमारे हृदय के सिंहासन पे बैठेंगे, जहां भगवान बैठे हो किसकी हिम्मत है सामने आ गई है। ये सारी भौतिक इच्छाएं माया है, अनर्थ है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। और हमारा दुर्भाग्य देखो, हम अनर्थों के पीछे भाग रहे हैं। हमारे जीवन की अभिलाषा है अनर्थों को इकट्ठा करना। हम इन भौतिक इच्छाओं को सुख की कुंजी समझ रहे हैं, और ये भौतिक इच्छाएं आत्मा की बीमारी है, ये हमारी बीमारी है। भौतिक हृदय कामम रोगम, लस्टी डिजायर्स, भगवान से विमुख होकर आनंद पाना, ये हमारी बीमारी है, रुग्ण अवस्था है। इसी को ठीक करने के लिए गुरु हमें आदेश दे रहे हैं, और हम लोग बीमारी का इलाज करने की जगह बीमारी को और बढ़ा रहे हैं। हम सोचते हैं बीमारी हमें सुख देगी। एक बनिया था, बुरा मत माने, बहुत ही कंजूस लाला जी थे, है ना, उनको जुकाम लग गया। उस जुकाम को भी बाहर निकाल के फेंक नहीं रहे, बोले क्यों वेस्ट करूं भैया, सब खाया पिया है, ये जुकाम इसको भी नहीं फेंक रहे। अरे डॉक्टर बोले निकाल दो भाई, फंस जाओगे अंदर, नजला हो जाएगा। नहीं नहीं, इसको भी बाहर नहीं निकालूंगा, सब अंदर रोक के रखूंगा। बीमारी को भी वो सोच रहा है ये मेरा धन है। यही हमारी हालत है, ये हमारी बीमारी है। खूब बड़ा व्यक्ति बनूंगा, ये बीमारी है। खूब धन कमाऊंगा, ये बीमारी है। बहुत बड़ी कोठी बनाऊंगा, ये बीमारी है। छोटी गाड़ी में आनंद नहीं आ रहा, ये बीमारी है। बहुत हो गया, मैं विवाह करूंगा, ये बीमारी है। ये बीमारी है, ये सुख को प्रदान नहीं करेगी। अब जिस आश्रम है उस आश्रम में स्थित रहें, उस आश्रम के नियमों का अच्छे ढंग से पालन करें, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करें। ब्रह्मचारी आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम के नियमों का पालन करें। बस हम देखेंगे इसी में सुख प्राप्त हो जाएगा। पूरा वैदिक शास्त्र हमें सुख देने के लिए बनाए गए हैं, दुख टॉर्चर करने के लिए नहीं। तो ध्यान पूर्वक माता दिति ने करके दिखाया तो उनका हृदय शुद्ध हो गया। हम भी करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। और अगर हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, भौतिक इच्छाओं को कोने में दबाए रखते हैं, नहीं नहीं इसको नहीं छोड़ना, बना के रखना है, तो हमारी हालत कैसे होगी। भागवतम 11 स्कंद में उदाहरण दिया गया है, एक कैदी है, बहुत लंबी उम्र कैद हो गई है उसको। हाँ, वो देख रहा है, कैद के अंदर एक छोटी सी खिड़की है, खिड़की में सलाखें लगी हुई हैं, सलाखों में खड़ा होकर देख रहा है, बाहर प्रकाश है, लोग खेल रहे हैं, बस बेचारा देख के खुश हो रहा है। उसके बाद में उसका कैदी आया, उसका जेलर आया कि तुम भी बाहर जा सकते हो। नहीं नहीं, बस यही ठीक है, इतने टाइम से मैं यहाँ पर हूँ, इन दीवारों पर मैंने देखी कितनी सुंदर सन पेंटिंग कर दी है ना, अभी मेरा प्रमोशन भी होने वाला है, ए क्लास जेल में जाने वाला हूँ, है ना, तो मैं अब यहीं ठीक हूँ। अच्छा लग रहा है बाहर देख कर, अच्छा लोग कैसे खेल रहे हैं, धूप है, अच्छा वातावरण है, बस इसी में ठीक हो। यही हमारी, बस हमारी भी यही स्थिति है। अच्छा है, भक्ति में बताया जा रहा है कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, असली आनंद मिलेगा, हाँ अच्छा है करो, नहीं नहीं ठीक है, ये ठीक है, अभी 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 ठीक है, अभी मुझे बोनस मिलना है, अभी मुझे ये मिलना है, यही ठीक है। सलाखें पकड़ के खड़े हुए हैं, अरे बाहर जा सकते हैं, खेल सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं यू कैन डांस विद कृष्णा, यू कैन प्ले विद कृष्णा, यू कैन ईट विद कृष्णा। नहीं नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। हमें ये सब प्राप्त हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु उन्नत उज्जवल रस देने आए हैं, जो अभी तक किसी ने नहीं दिया था। हम कल्पना में, हम जानते भी नहीं वो रस क्या है, इसलिए पता नहीं है, यही ठीक है। ये भौतिक इच्छाएं, भौतिक आसक्ति हमें बांध कर रखते हैं। और अगर हम इसको बांध के रखेंगे तो भागवतम के दशम स्कंद में वेद स्तुति कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा श्लोक है कि अगर कोई संन्यास में भी चला गया, संन्यास आश्रम के जो सदस्य अपने हृदय से भौतिक इच्छा को समूल उखाड़ कर फेंक नहीं देते, बताया कि यति न समुद्रंती यतयो हृदि काम जटा। काम जटा का अर्थ है ट्रेसेस ऑफ मटेरियल डिजायर्स, मतलब कि छोटी छोटी कोई भौतिक इच्छाएं रह गई, समुद्रंती पूर्ण रूप से उसको उखाड़ कर कोई फेंकता नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, दुरीदो गमो असताम हृदि गतो अस्मृत कंठमणि। उनके लिए भगवान को जान पाना बिल्कुल असंभव है, यानी कि छोटी सी भी भौतिक इच्छा हमारे हृदय में रह गई तो हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। कैसे नहीं जान पाएंगे, उदाहरण दे रहे हैं अस्मृत कंठ मणि, किसी के गले पर मणि है और वो उसको मालूम नहीं कि उसके हृदय कंठ में मणि है। हृदय में परमात्मा है क्योंकि हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं, इसलिए हम उनको समझ नहीं पाएंगे। हमारे कंठ में मणि है लेकिन हमें मालूम नहीं कि हमारे पास क्या है, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। केवल दिखावे मात्र से हम भगवत धाम नहीं जा सकते। फर्स्ट क्लास चमकती हुई धोती कुर्ता, बढ़िया नया नया बीट बैग और बहुत ही बड़ा आकर्षक काउंटर, बढ़िया तिलक, बढ़िया कंठी, फर्स्ट क्लास चमकता हुआ भक्त भगवत धाम जाने के लिए ये योग्यता नहीं है। या फिर बढ़िया बढ़िया श्लोकों का उच्चारण करना, बहुत बढ़िया बोलना, ये भी भगवत धाम जाने की योग्यता नहीं है। भगवत धाम जाने के लिए हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध करना पड़ेगा, पूरा हृदय बदलना पड़ेगा, क्रांति लानी पड़ेगी। कुछ भौतिक इच्छा नहीं, अपने सुख की कोई वासना नहीं, जहां तक सुख की छोटी सी भी वासना रह गई भगवान को नहीं जान पाएंगे, और भगवान को नहीं जान पाएंगे जीवन बर्बाद। मनुष्य जीवन केवल अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा, परम ब्रह्म को जानने के लिए, भगवान से संबंध बनाने के लिए है। तो पूर्ण रूप से हृदय को शुद्ध करना है, बोल सकते हैं तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, लेकिन उसके बाद मिलेगा क्या, ये सोचिए कैसे मिलेगा। कितने लोगों के यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, कितने भक्तों ने इंजीनियरिंग की है, कितने भक्तों चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी कर रहे हैं, बन गए हैं, कितने भक्तों ने बड़ा संघर्ष करके बिजनेस सेटअप किया है, है ना, कितना संघर्ष करते हैं, है ना, आठवीं नवीं क्लास से ही आईआईटी में जाना है, इंजीनियर बनना है, टीवी बंद, ये बंद, वो बंद, सब पढ़ाकू बन जाते हैं, है ना, कितना संघर्ष करते हैं। किसको पढ़ना अच्छा, रट्टे लगाना अच्छा लगता था, साई फाई थाई सीथा बीटा बीटा, उनका कोई मतलब है, टेंजेंट थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, क्या है, कोई मतलब था, ये इक्वेशन वो याद करो, ये रट्टे लगाते थे, क्यों भाई, उसके बाद मैं ये बन जाऊंगा, ये नौकरी मिलेगी, फिर अच्छी लड़की से शादी होगी, वाह वाह, नो हो गया, बस यही सपना है, यही सपना था, इसलिए अभी लगा ले जीवन बर्बाद हो जाएगा, मत पढ़ पढ़ कुछ कर, कुछ बन के दिखाना है, कुछ कर दिखाना है। कितना संघर्ष करते थे, इसी ढंग से हमें मालूम होना है प्रयोजन कृष्ण प्रेम, भगवान के साथ नाचूंगा, भगवान के साथ खाऊंगा, आहा, तो खूब मेहनत करें। कोई बात नहीं, सफाई करनी है ना, कर देंगे सफाई, क्या है प्रभु जी, सफाई तो करनी है। और ये हरिनाम बहुत मदद करेगा, चेतो दार्पण मार्जनम भव महादाव अग्नि निर्वापणम, ये कोई झूठा वायदा नहीं है, बिल्कुल हृदय शुद्ध हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है, विशेष विशेष कृपा है, स्पेशल 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 बंपर ऑफर केवल इसी कलयुग में है ना, और ऑफर वैलिड ऑनली टिल 10,000 ईयर्स बस, उसके बाद गोलोक के दरवाजे बंद, आप खोलेंगे 430 करोड़ साल के बाद। इतना सौभाग्य है, इतना सौभाग्य है, पूरी शक्ति लगा दें, एनर्जी लगा दें, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान का दास बनना, बस और कुछ नहीं। किसी भी आश्रम में हो, अब जितनी भी उम्र बची है, जो गलतियां हो गई सो हो गई, प्रार्थना करनी चाहिए। हमें कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, मतुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहार्यपि लज्जा मे किम ब्रूवे पुरुषोत्तम। पद्म पुराण में ये प्रार्थना आती है, हे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, हमसे बड़ा पाप आत्मा कोई नहीं है, ना ही कोई अपराधी। इतना ही नहीं, जब हम आपको अपने पापों का उल्लेख करना चाहते हैं तो हम तुरंत लज्जित हो जाते हैं, फिर उन्हें त्यागने को तो क्या कहना, इतने पाप मैंने किए, इतने अपराध किए, मैं क्या बताऊं भगवान आपको, मैं लज्जित हो जाता हूँ। तो प्रार्थनाएं करें, खूब प्रार्थनाएं करें। इसी ढंग से विष्णु पुराण में प्रार्थना आती है, हम सबके लिए बहुत मोस्ट एप्लीकेबल प्रार्थना है। युवती नाम यथा युवनी यूनाम च यवतो यथा मनोभ्य अभिमनिते तद्वन मनो में रमताम त्वयी। जिस प्रकार युवतियों का मन युवकों के विचारों में तथा युवकों का मन युवतियों के विचारों में मग्न रहता है, कृपया उसी प्रकार मेरे मन को आपके विचारों में मग्न रहने दें। प्रार्थना करें, खूब प्रार्थना करें भगवान से। भक्ति रसामृत सिंधु में एक बहुत सुंदर प्रार्थना रूप गोस्वामी जी ने बताई है। रूप गोस्वामी बता रहे हैं, ओ मेरे भगवान, मेरे जो काम आसनाओं के जो उन्होंने जो आदेश दिए हैं, असीमित आदेश दिए हैं, और मैंने उनके खूब सेवा की है, लेकिन उन्होंने मुझ पर कुछ भी कृपा नहीं की और मुझे कुछ शर्म भी नहीं आई उनकी सेवा करने में, और मैं उनको त्यागना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो यदुपति अब क्या हो रहा है, बस हाल ही में मेरी बुद्धि अब जागृत हो गई है और अब मैं इन भौतिक इच्छाओं को त्यागना चाहता हूँ। अब इस दिव्य बुद्धि के द्वारा मैं इन काम वासनाओं के किसी भी आज्ञा को नहीं मानूंगा। अब मैं आपकी शरण लेता हूँ, आपके चरणों में मुझे अभय प्रदान होता है, कृपया करके मुझे अपनी व्यक्तिगत सेवा में लगाइए और मुझे बचा लीजिए। कितनी सुंदर प्रार्थना है। आचार्यगण हमारी कितनी मदद कर रहे हैं, तो हमें हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि अब बहुत गलतियां हो गई, अब नहीं, अब जीवन का लक्ष्य हृदय को शुद्ध करना, और हृदय को हम शुद्ध करेंगे कैसे करेंगे, गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्त ते करिया एक्या। माता दीति ने कश्यप उनके पति थे, गुरु तुल्य थे, उनकी आज्ञा को बिल्कुल माना। इसी ढंग से हमें भी शिला प्रभुपाद जी की आज्ञा को बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए। प्रभुपाद ने जो हमें मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, जो भक्त मंदिर में रहते हैं, सख्ती से उसका पालन करेंगे, एक अलग परिणाम मिलेगा। हर प्रोग्राम में हमें अटेंटिव होना है। माता दीति हर प्रोग्राम में अटेंटिव थी, हमें भी हर प्रोग्राम में अटेंटिव होना है। आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से देख सकते हैं, अगर 4:30 मंगल आरती शुरू होती है, अगर भक्त लोग 4:29 में आएंगे तो एक मंगल आरती का एक अलग अनुभव होगा, अगर 4:32 में आएंगे तो एक अलग अनुभव होगा, 4:40 में आएंगे तो ज्यादा ही अनुभव होगा, 5 आएंगे तो दर्शन ही बंद हो जाएंगे। एक अलग अलग अनुभव है, प्रोसेस वही है। आप कितने अटेंटिव हैं, गुरु अष्टकम चल रहा है, आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं, कितने ध्यान से मेडिटेट कर रहे हैं, गुरु पूजा चल रही है, आप कितने ध्यान से, भागवत में आप कितने अटेंटिव हैं, प्रसाद लेते हुए आप कितने अटेंटिव हैं, सोते हुए हम कितने अटेंटिव हैं, सोते हुए भी अटेंटिव भक्त लोग रहते हैं। भक्त लोग जब छठ गोस्वामी सोते थे तो बड़े रोते थे, पश्चाताप, ओहो 90 भी वेस्ट हो गए, 90 केवल विश्राम करते थे, उनको पश्चाताप होता था, हमारी 90 थोड़ी सी नींद कम हो जाए, आधा घंटा हमें पश्चाताप होता है, आज आधा घंटा कम सोया, अब कहाँ सो, कहाँ पूरा करूँ इस नींद को, हम सोच बहाना ढूंढते रहते हैं। तो इसलिए ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ मिला है हमें, और क्यों ना हम भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए प्रयास करें, और शिला प्रभुपाद जी की कृपा से हमें शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद हमें आश्वासन दे रहे हैं, ये भौतिक इच्छाएं हमारे शत्रु हैं, तो भक्ति करते हुए इन भौतिक इच्छाओं को हम बनाकर ना रखें। किस तरह से हम भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं, क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सबसे पहले जो गुरु ने आदेश दिए हैं उसका पालन करें। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाप बताते हैं कि जो शिष्य वो चिंता नहीं करता कि मुझे सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शिष्य की खाली यही चिंता है कि मैं गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, बस। गुरु की आज्ञा पालन करते ही हम मुक्त हो गए, मुक्ति के लिए अभिलाषा करने की आवश्यकता ही नहीं। नंबर एक। नंबर दो, कि हम ध्यान पूर्वक जप करें। गुरु की आज्ञा में सबसे महत्वपूर्ण बात है ध्यान पूर्वक जप करना। कई भक्त ने प्रश्न पूछा एक बार इसोलनिया साधना स्वामी महाराज से, जब करते हुए अगर सेवा के विचार आ रहे हैं तो क्या गलती है, मुझे आज सेवा करनी है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे, बुक मैराथन है उसके पास जाऊंगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम, पिछली बार 1100 गीता कहती है, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, अब ऐसा करूँगा, हरे कृष्ण क्या गलती है, सेवा के बारे में विचार कर रहा हूँ। तुमने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, ठीक है, जब करना भी एक सेवा है, बुक मैराथन भी एक सेवा है, तो दोनों सेवाओं को मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि मैं आरती कर रहा हूँ, गौर आरती कर रहा हूँ, और प्रसाद पाना भी एक सेवा है, आरती करते करते रसगुल्ला खाऊंगा, क्या कर रहे हो, एक टाइम पे एक चीज कर लो, पहले प्रसाद खाने की सेवा कर लो, फिर आरती करने की सेवा कर लेना, दोनों सेवाओं को मिक्स मत करो, है ना। तो जप करते समय केवल जप, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। सारी चिंताएं सताएंगी, बहुत कुछ है। हमारी चिंता यही होनी चाहिए गुरु के आगे ध्यानपूर्वक जप करना, बस ये चिंता है। और कोई चिंता नहीं है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, अभी बात में, अभी खाली यही चिंता है ध्यानपूर्वक जप कैसे करना है बस। तो ध्यानपूर्वक जप करेंगे, ये सबसे मुख्य गुरु की आज्ञा है। खूब हृदय से प्रार्थनाएं करेंगे और सही भक्तों का हम संग करेंगे जो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, है ना। संगात संजाय ते कामा, संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित रूप से जो हमारे जीवन का प्रभुपात कर रहे हैं, समस्त कामनाओं का अंतिम लक्ष्य श्री भगवान का दास बनना है। आज मेरा टाइटल मुझे मिल गया, मैं दीक्षित हो गया रुक्मिणी कृष्ण दास। बहुत बड़ा टाइटल है, है ना। वैष्णव समाज में बहुत इज्जत है दास शब्द के, लेकिन ये जो दास गुरु ने हमें टाइटल दिया है, ये मुझे एक सुविधा दी है, फैसिलिटी दी है कि मैं इसके लिए एस्पायर करूं। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरे में योग्यता नहीं है कि मैं कृष्णदास कहलाऊं, चाहे मुझे लाखों करोड़ जन्म क्यों ना लग जाए, लेकिन मैंने इस योग्यता को प्राप्त करना है। मैंने कृष्णदास बनना है, या इसी जन्म में, अगले कई जन्म क्यों ना लग जाए, यही जीवन का लक्ष्य है कि मुझे कृष्णदास बनना है। हरे कृष्ण। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम के, जगत गुरु शील प्रभुपाद के, अनंत कोटि वैष्णव बिंद के, निताय गौर प्रेमानंद है।